मुराद को देखते हुए रियाज उसके पास आता है और अपनी सर्द आवाज में कहता है, एशिया के डॉन का भाई एक बेवकूफ आदमी है, किसी को पता चल गया तो लोग हंसेंगे मुझ पर। सॉरी भाई। जैसे ही मुराद ने ये कहा, रियाज का एक मुक्का उठकर तैयार खड़ा था, पर मुराद ने जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रखा और घबराते और डरते हुए कहने लगा, प्लीज भाई मुंह पर मत मारना, मेरा हैंडसम सा थोड़ा बिगड़ जाएगा। रियाज के हाथ वहीं रुक गए थे, पर उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी था। उसे ऐसा देखकर तीनों लड़कियां सहम गई थीं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ चिपक कर खड़ी हो गई थीं। रियाज ने गुस्से में अपने मुक्के को नीचे झटका और चिल्लाते हुए मुराद से कहने लगा, जब तुम्हें पता है कि इनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो कैसे निभाई है तुमने अपनी जिम्मेदारी? क्या यही है तुम्हारे सबसे बेस्ट सिक्योरिटी एजेंट जिसे तुमने हायर किया हुआ है? उनको ये तक पता नहीं चला कि लड़कियां कब उनकी नाक के नीचे से हवेली से बाहर चली गईं और वो सब यहां पर झक मार रहे थे? तुम्हें पता है कि अगर मैं वहां पर इन्हें नहीं देखता और मैंने सही वक्त पर घर आने के लिए नहीं कहता, तो हमारे दुश्मनों की नज़र इनके ऊपर पड़ सकती थी और उसके बाद उनके साथ क्या होता, क्या ये सोच सकते हो तुम? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है मुराद? मैंने पहले ही कहा था, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन काम में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। मुराद ने अपना चेहरा नीचे किया और डरते हुए कहा, आई एम सॉरी भाई, मुझे पता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं आज ही सिक्योरिटी हेड से बात करूंगा कि उन्हें कैसे पता नहीं चला कि लड़कियां घर से बाहर गई हैं, और आप फ्रीक मत कीजिए, मैं आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रियाज ने घूरते हुए मुराद को देखा और एक कदम पीछे होते हुए अपने दोनों हाथ बांधकर उससे कहता है, अपनों के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, इसका अंदाज़ा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद इन सबसे डील करोगे। इसीलिए मुराद सैयद, अब से लेकर जब तक तुम्हारे कॉलेज फिर से शुरू नहीं हो जाती है, तब तक के लिए तुम मेरे साथ बिजनेस और माफिया का काम संभालोगे। मैं तुम्हें हर चीज़ से रूबरू करवाऊंगी ताकि तुम्हें पता चल सके कि एक माफिया का परिवार होना कितनी बड़ी बात होती है। अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुराद हैरानी से रियाज को देखता है और ना में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं भाई प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी आज़ादी चली जाएगी। मैं अगर हर वक्त आपके साथ रहा तो फिर मुझे भी हर वक्त आपके साथ काले काले कपड़े वाले लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा और वो सब मेरे आगे पीछे ऐसे घूमेंगे जैसे कि मेरी परछाई है। प्लीज़ भाई मुझे ये सज़ा मत दीजिए, आपकी कोई भी सज़ा मुझे मंजूर होगी पर ये वाली नहीं। रियाज ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये ऑफर नहीं है, ऑर्डर है। उसके बाद रियाज ने उन तीनों की तरफ देखा और फिर मुराद की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब जाओ यहाँ से। तीनों लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपना पहला कदम आगे बढ़ानी ही वाली थीं कि रियाज ने सख्ती से कहा, सिर्फ इनायत नहीं जाएगी। उन सब के कदम रुक जाते हैं और सब हैरानी से रियाज को देखने लगते हैं। तो रियाज ने घूरते हुए सबको देखकर कहा, क्या मुझे अपनी बात दोहरानी चाहिए? अमल और जन्नत ने धीरे से इनायत का हाथ छोड़ दिया। इनायत ने बहुत रिक्वेस्ट के साथ उन दोनों की तरफ देखा, पर वो दोनों अपनी आंखों से ही इनायत को ये कह रही थीं कि सॉरी भाभी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनायत बस उन तीनों को देखते रह जाती है और वो तीनों एक एक करके वहां से चले जाते हैं। जैसे ही अमल स्टडी रूम से बाहर जाती है, वैसे ही दरवाज़ा बंद हो जाता है और अब इनायत रियाज के साथ अकेली उस लाइब्रेरी में थी। सहमी सी वो सिर्फ उसे बंद दरवाजे को देखे जा रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने ही कानों में अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। इनायत, रियाज ने उसका नाम पुकारा। उसने धीरे से मुड़कर रियाज की तरफ देखा जो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो अपनी एक हाथों की उंगलियों के बीच में पेन को फंसाकर उसे घुमाए जा रहा था, जबकि उसकी कुर्सी को वो बार बार आगे पीछे करके किसी झूले की तरह झुलाता हुआ अपनी सर्द निगाहों से इनायत को ही देख रहा था। रियाज का चेहरा इस समय एक्सप्रेशनलेस था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है पर वो अपनी चेहरे से दिखा नहीं रहा है। अचानक से रियाज की कुर्सी ने घूमना बंद कर दिया और वो अपनी जगह पर स्थिर बैठ गया। उसने एक नज़र अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को देखा और फिर उसे वापस पेन स्टैंड में रखकर वो दोबारा से इनायत को घूरने लगा। उसकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस करके इनायत हर बार और ज़्यादा डर जाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे रियाज की नज़रें किसी चुंबक का काम करती हैं, क्योंकि एक बार उसे नज़रें मिलाने के बाद वो अपनी नज़रें हटा भी नहीं पाती थीं। इनायत ने एक नज़र रियाज को देखा, लेकिन तभी उसे रियाज के उस हैंडसम से चेहरे पर न जाने क्यों जिब्रान का अक्स नज़र आने लगा और वो अचानक से जिब्रान के साथ अपने एक सुनहरे पल की यादों में चली जाती है। इस वक्त जिब्रान और इनायत किसी बगीचे में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे। उन दोनों ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो दोनों अपने चेहरे से ही बच्चे नजर आ रहे थे। शायद ये उम्र का वो पड़ाव था जब इनायत ने जिब्रान के लिए अपने प्यार को महसूस किया था। वो जिब्रान के चेहरे को देखे जा रही थी तो जिब्रान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या देख रही हो? तुम्हारा चेहरा कितनी अच्छी बनावट है ना तुम्हारे चेहरे की, तुम्हारे नया नक्श कितने अच्छे हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे चेहरे से ज्यादा हैंडसम चेहरा इस दुनिया में है ही नहीं। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हैंडसम हूँ? ये बात तुम सच कह रही हो या बस मुझे बताने के लिए कह रही हो? जिब्रान ने इनायत को मुस्कुराते हुए देखकर सवाल किया। तो इनायत नामे सर हिलाती है और कहती है, नहीं मैं तुम्हारे बना नहीं रही हूँ बल्कि सच कह रही हूँ, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। और अगर दुनिया में तुमसे ज्यादा हैंडसम कोई है भी तो भी वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अचानक से इनायत अपने ख्वाबों से बाहर आती है जब उसके कानों में रियाज की सर्द आवाज पड़ती है। ऐसे क्या घूर कर देख रही हो मुझे? माना मैं हैंडसम हूँ पर इस तरीके से देखोगी तो एक पल के लिए मैं भी शर्मा जाऊंगा। इनायत को एहसास होता है कि वो किसी बेवकूफों की तरह रियाज को बस घूरे जा रही थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, सॉरी। रियाज ने अपनी एक उंगली के इशारे से उसे आगे बुलाते हुए कहा, यहाँ आओ।